ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 15। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसे नदी वायु से अनेक तरंग पसारती है, वैसे ही युवावस्था चित्त के अनेक कामों को उठाती है। जैसे पक्षी पंख से बहुत उड़ता है और जैसे सिंह भुजा के बल से पशु को मारने दौड़ता है, वैसे ही चित्त युवावस्था में विक्षेप की ओर धावता है। हे मुनीश्वर, समुद्र का तरना कठिन है क्योंकि उसमें जल अथाह है, उसका विस्तार भी बड़ा है और उसमें कच्छ मच्छ मगर भी बड़े बड़े जीव रहते हैं, पर मैं उनका तरना भी सुगम मानता हूं, परंतु युवावस्था का तरना महाकठिन है। अर्थात युवावस्था में निर्दोष रहना कठिन है। ऐसे संकट वाली युवावस्था में जो चलायमान नहीं होते, सो पुरुष धन्य है और वंदना करने योग्य है। हे मुनीश्वर, यह युवावस्था चित्त को मलिन कर डालती है, जैसे जल की बावली के निकट राख और कांटे हो और पवन चलने से सब आकर बावली में गिरे, वैसे ही पवन रूपी युवावस्था दोष रूपी धूल और कांटों को चित्त रूपी बावली में डाल के मलिन कर देती है। ऐसे अवगुणों से पूर्ण युवावस्था की इच्छा मुझको नहीं है। युवावस्था मुझ पर यही कृपा कर कि तेरा दर्शन न हो। तेरा आना मैं दुख का कारण मानता हूं। जैसे पुत्र के मरण का संकट पिता नहीं सह सकता और सुख का निमित्त नहीं देखता, वैसे ही तेरा आना मैं सुख का निमित्त नहीं देखता। इससे मुझ पर दया कर कि अपना दर्शन न दे। हे मुनीश्वर, युवावस्था का तरना महाकठिन है। यौवनवान नम्रता संयुक्त नहीं होते और शास्त्र के गुण वैराग्य विचार संतोष और शांति इनसे भी संपन्न नहीं है। जैसे आकाश में वन होना आश्चर्य है, वैसे ही युवावस्था में वैराग्य विचार शांति और संतोष होना भी बड़ा आश्चर्य है। इसे आप मुझसे वही उपाय कहिए जिससे युवावस्था के दुख से मुक्ति होकर मैं आत्मपद की प्राप्ति कर सकूं। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जिस काम विलास के निमित्त पुरुष स्त्री की वांछा करता है, वह स्त्री अस्थि मांस रुधिर मूत्र विष्ठा से पूर्ण है और इन्हीं की पुतली बनी हुई है। जैसे यंत्री की बनी पुतली तागे के द्वारा अनेक चेष्टा करती है, वैसे ही यह अस्थि मांस आदि की पुतली में कुछ और नहीं है। जो विचार से नहीं देखता उसको रमणीय दिखती है। जैसे पर्वत के शिखर दूर से सुंदर और गंग माला सहित भासते हैं और निकट से असार है, पत्थर ही पत्थर दिखते हैं, वैसे ही स्त्री वस्त्र और भूषणों से सुंदर भासती है। जो अंग को भिन्न भिन्न विचार कर देखे तो सार कुछ नहीं। जैसे नागिन के अंग बहुत कोमल होते हैं, परंतु उसका स्पर्श करे तो काट के मार डालती है, वैसे ही जो कोई स्त्री को स्पर्श करते हैं उनको वह नाश कर डालती है। और जैसे हाथी को जंजीर से बांधे तो जिस द्वार पर रहता है वही स्थिर रहता है, वैसे ही अज्ञानी का चित्त रूपी हाथी काम रूपी जंजीर से बंधा हुआ स्त्री रूपी एक स्थान में स्थिर रहता है, वहां से कहीं जा नहीं सकता। जब हाथी को महावत अंकुश का प्रहार करता है, तब वह बंधन को तोड़ के निकल जाता है। वैसे ही इस चित्तरूपी मूर्ख हाथी को जब महावत रूपी गुरु उपदेश रूपी अंकुर अंकुश का बारंबार प्रहार करते हैं तब निर्बंध होता है। हे मुनीश्वर, कामी पुरुष स्त्री की वांछा अपने नाश के निमित्त करता है। जैसे कदली वन का हाथी कागज की हथिनी देखकर और छल पाके बंधन में आता है और उससे परम दुख को पाता है, वैसे ही सब दुखों का मूल स्त्री का संग है। हे मुनीश्वर, जैसे वन के दाह की अग्नि वन को जलाती है, वैसे ही स्त्री रूपी अग्नि उससे भी अधिक है, क्योंकि वह अग्नि तो स्पर्श करने से ही जलाती है, परंतु स्त्री रूपी अग्नि स्मरण मात्र से जलाती है। जो सुख रमणीय दिखता है वह आपात रमणीय है। जब स्त्री सुख का वियोग होता है तब मुर्दे किनाई हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह तो अस्थि मांस और रुधिर का पिंजरा है, सो अग्नि में भस्म हो जाएगा अथवा पशु पक्षी के खाने का आहार होगा और प्राण आकाश में लीन हो जाएंगे। इसे स्त्री की इच्छा करना मूर्खता है। जैसे अग्नि की ज्वाला के ऊपर शामता होती है, वैसे स्त्री के शीश के ऊपर शाम केश है, और जैसे अग्नि के स्पर्श करने से जलता है, वैसे ही स्त्री के स्पर्श करने से पुरुष जलता है। इससे जलना दोनों में तुल्य है। हे मुनीश्वर, युवावस्था को नष्ट करने वाली स्त्री रूपी अग्नि है। जो स्त्री की इच्छा करते हैं वे महामूर्ख और अज्ञानी है। वह स्त्री इच्छा अपने नाश के निमित्त करते हैं। जैसे पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही कामी पुरुष अपने नाश के निमित्त स्त्री की इच्छा करता है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी विष की बेली है, हाथ पाव के अग्रभाग उसके पत्र है, भुजा डाली है, स्तन रूप गुच्छे है और नेत्र आदि इंद्रिया फूल है। उस पर कामी पुरुष रूप विभवरे आ बैठते हैं। काम रूपी धीवर ने स्त्री रूपी जाल पसारा है, उस पर कामी पुरुष रूपी पक्षी आकर फंसते हैं। काम रूपी धीवर उनको फंसाकर परम कष्ट देता है। ऐसे दुख देने वाली स्त्री की जो वांछा करते हैं वे महामूर्ख है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी सर्पिणी है, जब उसका फुत्कार निकलता है तब वैराग्य रूपी कमल जल जाते हैं, और जब सर्पिणी डसती है तब विष चढ़ता है। स्त्री रूपी सर्पिणी का चिंतन करते ही भीतर से आप ही विष चढ़ जाता है। हे मुनीश्वर, जैसे व्याध छल कर मछली फांसता है, वैसे ही कामी पुरुष छली के सदृश सुंदर स्त्री रूपी जाल देखकर उसमें फंसता है और स्नेह रूपी तागे से बंधन पाकर खींचा चला जाता है, तब तृष्णा रूपी छुरी से काम उसे मार डालता है। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख देने वाली स्त्री की मुझको इच्छा नहीं। काम रूपी व्याध ने राग रूपी इंद्रियों से जाल बिछाकर कामी पुरुष रूपी मृगों को आसक्त कर डाला है। स्त्री के स्नेह रूपी डोरी है, उससे कामी पुरुष रूपी बैल बंधा है, और स्त्री के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर कामी पुरुष रूपी कमली खिल जाती है। जैसे चंद्रमुखी कमल चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होते हैं और सूर्यमुखी नहीं होते, वैसे ही कामी पुरुष भोग से प्रसन्न होते हैं और ज्ञानवान प्रसन्न नहीं होते। जैसे नेवला सर्प को बिल से निकाल के मारता है, वैसे ही कामी पुरुष को स्त्री आत्मानंद में से निकाल के मार डालती है। हे मुनीश्वर, पुरुष जब स्त्री के निकट जाता है तब वह उसको भस्म कर डालती है। जैसे सूखे तृण और घृत को अग्नि भस्म कर डालती है, वैसे ही कामी पुरुष को स्त्री रूपी नागिनी भस्म कर डालती है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी रात्रि का स्नेह रूपी अंधकार है और काम क्रोध आदि उसमें उल्लू और पिशाच है। जो स्त्री रूपी खड़ंग के प्रहार से युवा रूपी संग्राम से बचा है वह पुरुष धन्य है, उसको मेरा नमस्कार है। स्त्री का संयोग परम दुख का कारण है, इससे मुझको इसकी इच्छा नहीं है। हे मुनीश्वर, जो रोग होता है उसी के अनुसार जो औषध करता है तो रोग निवृत्त होता है, और कुपथ्य से उसका प्रकोप होकर रोग बढ़ जाता है। इसे मेरे रोग के अनुसार औषध करो। मेरा रोग सुनिए कि जरा और मृत्यु मुझको बड़ा रोग है, उसके नाश की औषध मुझको आप दीजिए। स्त्री आदि सब भोग तो रोग की वृद्धि करता है, जैसे अग्नि में घृत डालिए तो बढ़ जाती है, वैसे ही भोग से जरा मृत्यु आदि रोग पड़ते हैं। इससे इस रोग की निवृत्ति की औषधि करो, नहीं तो सबका त्याग कर मैं वन में जा रहूंगा। हे मुनीश्वर, जिसके स्त्री है उसको भोग की इच्छा भी होती है, और जिसके स्त्री नहीं होती उसको स्त्री की इच्छा भी नहीं होती। जिसने स्त्री का त्याग किया है उसने संसार का भी त्याग किया है और वही सुखी है। हे मुनीश्वर, संसार का बीज स्त्री है, इससे मुझको स्त्री की इच्छा नहीं। मुझको वही औषधि दीजिए आप कि जिससे जरा मृत्यु आदि रोग की निवृत्ति हो जावे। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, बालक अवस्था तो महाजड़ और अशक्त है। जब युवा अवस्था आती है तब बाल्य अवस्था को ग्रास कर लेती है, और उसके अनंतर जब वृद्ध अवस्था आती है शरीर जर्जरीभूत हो जाता है और बुद्धि क्षीण हो जाती है, फिर मृत्यु को पाता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार अज्ञानी का जीना व्यर्थ है, कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं है। जैसे नदी के तट पर के वृक्ष जल के प्रवाह से जर्जरीभूत हो जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था में शरीर जर्जरीभूत हो जाता है। जैसे पवन से पत्र उड़ जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था से शरीर नाश को पाता है। जितने कुछ रोग है वह सब वृद्धावस्था में आकर प्राप्त होते हैं और शरीर क्रश हो जाता है। उस समय स्त्री पुत्र आदि भी सब वृद्ध का त्याग कर देते हैं। जैसे पक्के फल को वृक्ष त्याग देता है, वैसे वृद्ध को कुटुंब त्याग देता है। और जैसे बावले को देख के सब हंस के बोलते हैं कि इसकी बुद्धि जाती रही, वैसे ही इसको भी देख के हंसते हैं। जैसे कमल का फूल बर्फ पड़ने से जर्जरीभूत हो जाता है, वैसे ही जरावस्था में पुरुष जर्जरी भाव को प्राप्त होता है। शरीर कुबड़ा हो जाता है, केश श्वेत हो जाते हैं और शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे चीरकाल के बड़े वृक्ष में घुन लगता है, वैसे ही इसमें कुछ शक्ति नहीं रहती। हे मुनीश्वर, और भी सब कृत्य क्षीण हो जाता है, परंतु एक आसक्तिमान रहती है। जैसे बड़े वृक्ष पर उल्लू आकर रहते हैं, वैसे ही इसमें क्रोध शक्ति आकर रहती है और सब शक्तियां क्षीण हो जाती है। हे मुनीश्वर, जरावस्था दुख का घर है। जब जरावस्था आती है तब सब दुख इकट्ठे होते हैं, इससे पुरुष महादीन हो जाता है। युवावस्था में जो काम का बल रहता है सो भी जरा में क्षीण हो जाता है। इंद्रियों की आसक्ति घट जाती है और उनकी चपलता का अभाव हो जाता है। जैसे पिता के निर्धन होने से पुत्र दीन हो जाता है, वैसे ही शरीर के निर्बल होने से इंद्रियां भी निर्बल हो जाती हैं। केवल एक तृष्णा बढ़ती जाती है। हे मुनीश्वर, जब जरा रूपी रात्रि आती है तब खांसी रूपी स्यार आकर शब्द करते हैं और आधी व्याधि रूपी उल्लू आकर निवास करते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसी नीच वृद्धावस्था की मुझको इच्छा नहीं है। जैसे फल से वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही बुढ़ापे में देह कुबड़ी हो जाती है। युवावस्था में स्त्री पुत्र आदि उसकी टहल करते थे, पर वही सब उसको वृद्धावस्था में जैसे वृद्ध बैल को बैल वाला त्याग देता है, वैसे ही त्याग देते हैं। देख के हंसते हैं और अपमान करते हैं। उनको वह तब ऊंट की नई भासता है। हे मुनीश्वर, ऐसी नीच अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। अब जो कुछ कर्तव्य हो मुझसे कहिए, वही मैं करूं। इस शरीर की तीनों अवस्था में कोई सुखदायी नहीं, क्योंकि बाल्य अवस्था महामूढ़ है, युवावस्था महाविकारवान है और जरा अवस्था महादुख का पात्र है। बाल्यावस्था को युवावस्था ग्रास कर लेती है, युवावस्था को जरावस्था ग्रास कर लेती है और जरावस्था को मृत्यु ग्रास कर लेती है। यह अवस्था सब अल्पकाल की है, इनके आश्रय से मुझको क्या सुख होगा। इससे आप मुझे वही उपाय बताइए जिससे इस दुख से मैं मुक्त हो जाऊं। हरि ओम, हरि ओम, ओम सनाववतु सनोपनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।